आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज।
मंटो का अफसाना, टेटवाल का कुत्ता। कई दिन से तरफैन अपने अपने मोर्चे पर जमे हुए थे। दिन में इधर और उधर से 10-12 फायर किए जाते, जिनकी आवाज के साथ कोई इंसानी चीख बुलंद नहीं होती थी। मौसम बहुत खुशगवार था, हवा खुद रो फूलों की महक में बसी हुई थी। पहाड़ियों की ऊंचाइयों और ढलवानों पर जंग से बेखबर कुदरत अपने मुकर्रा अशगाल में मसरूफ थी। परिंदे उसी तरह चहचहाते थे, फूल उसी तरह खिल रहे थे, और शहद की सुस्त रो मक्खियां उसी पुराने ढंग से उन पर ऊंग ऊंग कर रस चूसती थी। जब पहाड़ियों में किसी फायर की आवाज गूंजती तो चहचहाते हुए परिंदे चौंक कर उड़ने लगते, जैसे किसी का हाथ सांस के गलत तार से जा टकराया है और उनकी समाज को सदमा पहुंचाने का मुजीब हुआ है। सितंबर का अंजाम अक्टूबर के आगाज से बड़े गुलाबी अंदाज में बगलगीर हो रहा था। ऐसा लगता था कि मौसम में सरमा और गर्मा में सुलह सफाई हो रही है। नीले नीले आसमान पर धुनकी हुई रुई, ऐसे पतले पतले और हल्के हल्के बादल यूं तैरते थे जैसे अपने सफेद बजरों में तफरी कर रहे हैं। पहाड़ी मोर्चों में दोनों तरफ से सिपाही कई दिन से बड़ी कोफ्त महसूस कर रहे थे कि कोई फैसला कुन बात क्यों वाकू पजी नहीं होती। उकता कर उनका जी चाहता था कि मौका भी मौका एक दूसरे को शेर सुनाए, कोई ना सुने तो ऐसे ही गुनगुनाते रहे। पथरीली जमीन पर औंधे या सीधे लेटे रहते थे और जब हुक्म मिलता था एक दो फायर कर देते थे। दोनों के मोर्चे बड़ी महफूज जगह थे, गोलियां पूरी रफ्तार से आती थी और पत्थरों की ढाल के साथ टकरा कर वहीं चित हो जाती थी। दोनों पहाड़ियां जिन पर ये मोर्चे थे करीब करीब एक कद की थी। दरमियान में छोटी सी सब्ज पोश वादी थी जिसके सीने पर एक नाला मोटे सांप की तरह लोटता रहता था। हवाई जहाजों का कोई खतरा नहीं था, तोपे इनके पास थी ना उनके पास, इसलिए दोनों तरफ बेखौफो खतर आग जलाई जाती थी। उनसे धुएं उठते और हवाओं में घुल मिल जाते। रात को चूंकि बिल्कुल खामोशी होती थी, इसलिए कभी कभी दोनों मोर्चों के सिपाहियों को एक दूसरे के किसी बात पर लगाए हुए कह कहे सुनाई दे जाते थे। कभी कोई लहर में आके गाने लगता तो उसकी आवाज रात के सन्नाटे को जगह देती। एक के पीछे एक बाज गश्त सदाएं गूंजती तो ऐसा लगता कि पहाड़ियां आमोखता दोहरा रही हैं। चाय का दौर खत्म हो चुका था। पत्थरों के चूल्हों में चीड़ के हल्के फुल्के कोयले करीब करीब सर्द हो चुके थे। आसमान साफ था, मौसम में खुनकी था, हवा में फूलों की महक नहीं थी जैसे रात को उन्होंने अपने इत्रदान बंद कर लिए। अलबत्ता चीड़ के पसीने यानी बिरोजे की बू थी, मगर ये भी कुछ ऐसी नागवार नहीं थी। सब कंबल ओढ़े सो रहे थे, मगर कुछ इस तरह की हल्के से इशारे पर उठकर लड़ने मरने के लिए तैयार हो सकते थे। जमादार हरनाम सिंह खुद पहरे पर था। उसकी रास कोप घड़ी में 2 बजे तो उसने गंडा सिंह को जगाया और पहरे पर मुतय्यन कर दिया। उसका जी चाहता था कि सो जाए, पर जब लेटा तो आंखों से नींद को इतना दूर पाया जितना कि आसमान के सितारे थे। जमादार हरनाम सिंह चित्त लेटा उनकी तरफ देखता रहा और गुनगुनाने लगा। जुत लेनिया सितारियां वाली वे हरनाम सिंघा, ओ यारा भावी तेरी मही विक जाए। और हरनाम सिंह को आसमान हर तरफ सितारों वाले जूते बिखरे नजर आए जो झिलमिल झिलमिल कर रहे थे। जत्ती ले दो सितारियां वाली नी हर नाम कोरे हो नारे भावी मेरी मही विक जाए। ये गाकर वो मुस्कुराया, फिर ये सोच कर कि नींद नहीं आएगी उसने उठकर सबको जगा दिया। नार के जिक्र ने उसके दिमाग में हलचल पैदा कर दी थी। वो चाहता था कि ऊट पटांग गुफ्तगु हो जिससे इस बोली की हर नाम कोरी कैफियत पैदा हो जाए। चुनांचे बातें शुरू हुई मगर उखड़ी उखड़ी रही। बंता सिंह जो इन सब में कम उम्र और खुश आवाज था एक तरफ हटकर बैठ गया, बाकी अपनी बजाहिर पुरलुत्फ बातें करते और जमाइयां लेते रहे। थोड़ी देर के बाद बंता सिंह ने एकदम अपनी पुरसोज आवाज में हीर गाना शुरू कर दी। हीर आखिया जो गया झूठ बोली, कौन रोठड़े यार मनाओ दाई, ऐसा कोई न मिलिया मैं ढूंढ थकी जिहड़ा, गया नू मोड़ लाई दो दाई, एक बास तो कांग ने कूंज खोई दिखा चुप है कर लाओंदाई दुखा वालिया नू गला सुख दिया निक से जोड़ जहान सुनाओंदाई। फिर थोड़े वक्फे के बाद उसने हीर किन बातों का जवाब रांझे की जबान में गाया। जेहड़े बाज तो कांग ने कूंज खोई सब्र शुक्र कर बाज फना होया ऐ भी हाल है इस फकीर दानी धन माल गया तै तबाह होया कर से दगते कम मालूम होवे तेरा रब रसूल गवाह होया दुनिया छड उदासिया पहन लिया सैयद वारिस सोहन वारिस शाह होया। बंता सिंह ने जिस तरह एकदम गाना शुरू किया था उसी तरह वो एकदम खामोश हो गया। ऐसा मालूम होता था कि खाक सतरी पहाड़ियों ने भी उदासियां पहन ली हैं। जमादार हरनाम सिंह ने थोड़ी देर के बाद किसी गैर मरई चीज को मोटी सी गाली दी और लेट गया। दाफतन रात के आखिरी पहर की सुदास फिजा में कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। सब चौंक पड़े। आवाज करीब से आई थी। सूबेदार हरनाम सिंह ने बैठ कर कहा, ये कहां से आ गया भौंकू? कुत्ता फिर भौंका। अब उसकी आवाज और भी नजदीक से आई थी। चंद लम्हात के बाद दूर झाड़ियों में आहट हुई। बंता सिंह उठा और उसकी तरफ बढ़ा। जब वापस आया तो उसके साथ एक आवारा सा कुत्ता था जिसकी दुम हिल रही थी। वो मुस्कुराया, जमादार साहब मैं हूं कमर इदा बोला तो कहने लगा मैं हूं चपड़ झुनझुन। सब हंसने लगे। जमादार हरनाम सिंह ने कुत्ते को पुचकारा, इधर आ चपड़ झुनझुन। कुत्ता दुम हिलाता हरनाम सिंह के पास चला गया और ये समझ कर कि शायद कोई खाने की चीज फेंकी गई है जमीन के पत्थर सूंघने लगा। जमादार हरनाम सिंह ने थैला खोलकर एक बिस्कुट निकाला और उसकी तरफ फेंका। कुत्ते ने उसे सूंघ कर मुंह खोला लेकिन हरनाम सिंह ने लपक कर उसे उठा लिया। ठहर, कहीं पाकिस्तानी तो नहीं? सब हंसने लगे। सरदार बंता सिंह ने आगे बढ़कर कुत्ते की पीठ पर हाथ फेरा और जमादार हरनाम सिंह से कहा, नहीं जमादार साहब चपड़ झुनझुन हिंदुस्तानी है। जमादार हरनाम सिंह हंसा और कुत्ते से मुखातिब हुआ, निशानी दिखाओ। कुत्ता दुम हिलाने लगा। हरनाम सिंह जरा खुल के हंसा, ये कोई निशानी नहीं, दुम तो सारे कुत्ते हिलाते हैं। बंता सिंह ने कुत्ते की लर्जा दुम पकड़ ली। शरणार्थी है बेचारा। जमादार हरनाम सिंह ने बिस्कुट फेंका जो कुत्ते ने फौरन दबोच लिया। एक जवान ने अपने बूट की एड़ी से जमीन खोदते हुए कहा, अब कुत्ते को भी या तो हिंदुस्तानी होना पड़ेगा या पाकिस्तानी। जमादार ने अपने थैले से बिस्कुट निकाला और फेंका, पाकिस्तानियों की तरह पाकिस्तानी कुत्ते भी गोली से उड़ा दिए जाएंगे। एक ने जोर से नारा बुलंद किया, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कुत्ता जो बिस्कुट उठाने के लिए आगे बढ़ा था डर के पीछे हट गया। उसकी दुम टांगों के अंदर घुस गई। जमादार हरनाम सिंह हंसा, अपने नारे से क्यों डरता है चपड़ झुनझुन, काले एक और ले। उसने थैले से एक और बिस्कुट निकालकर उसे दिया। बातों बातों में सुबह हो गई। सूरज अभी निकलने का इरादा ही कर रहा था कि चार सू उजाला हो गया। जिस तरह बटन दबाने से एकदम बिजली की रोशनी होती है उसी तरह सूरज की शुआएं देखते ही देखते उस पहाड़ी इलाके में फैल गईं जिसका नाम डेटवाल था। इस इलाके में काफी देर से लड़ाई जारी थी। एक एक पहाड़ी के लिए दर्जनों जवानों की जान जाती थी, फिर भी कब्जा गैर यकीनी होता था। आज ये पहाड़ी उनके पास है, कल दुश्मन के पास, परसों फिर उनके कब्जे में, इससे दूसरे रोज वो फिर दूसरों के पास चली जाती थी। सूबेदार हरनाम सिंह ने दूरबीन लगाकर आसपास का जायजा लिया। सामने पहाड़ी से धुआं उठ रहा था, इसका ये मतलब था कि चाय वगैरह तैयार हो रही है। इधर भी नाश्ते की फिक्र हो रही थी, आग सुलगाई जा रही थी, उधर वालों को भी यकीनन इधर से धुआं उठता दिखाई दे रहा था। नाश्ते पर सब जवानों ने थोड़ा थोड़ा कुत्ते को दिया जिसको उसने खूब पेट भर के खाया। सब उससे दिलचस्पी ले रहे थे जैसे वो उसको अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। उसके आने से काफी चहल पहल हो गई थी। हर एक उसको थोड़े थोड़े वक्फे के बाद पुचकार कर चपड़ झुनझुन के नाम से पुकारता और उसे प्यार करता। शाम के करीब दूसरी तरफ पाकिस्तानी मोर्चे पर सूबेदार हिम्मत खान अपनी बड़ी बड़ी मूछों को जिनमें बेशुमार कहानियां वाबस्ता थी मरोड़ देकर डेटवाल के नक्शे का बगौर मुताला कर रहा था। उसके साथ ही वायरलेस ऑपरेटर बैठा था और सूबेदार हिम्मत खां के लिए प्लाटून कमांडर से हिदायत वसूल कर रहा था। कुछ दूर एक पत्थर से टेक लगाए और अपनी बंदूक लिए बशीर हौले हौले गुनगुना रहा था। चन कित्ते गवाई रात वे, चन कित्ते गवाई। बशीर ने मजे में आकर जरा ऊंची आवाज की तो सूबेदार हिम्मत खान की कड़क बुलंद हुई।
ओए, कहां रहा है तू रात भर?
बशीर ने सवालिया नजरों से हिम्मत खान को देखना शुरू किया, जो बशीर के बजाय किसी और से मुखातिब था।
बता ओए।
बशीर ने देखा कुछ फासले पर वो आवारा कुत्ता बैठा था जो कुछ दिन हुए उनके मोर्चे में बिन बुलाए मेहमान की तरह आया था और वहीं टिक गया था। बशीर मुस्कुराया और कुत्ते से मुखातिब होकर बोला,
चन कित्ते गवाई रात वे, चन कित्ते गवाई।
कुत्ते ने जोर से दुम हिलाना शुरू कर दी, जिससे पथरीली जमीन पर झाड़ू सी फिरने लगी। सूबेदार हिम्मत खान ने एक कंकर उठाकर कुत्ते की तरफ फेंका।
साले को दुम हिलाने के सिवा और कुछ नहीं आता।
बशीर ने एकदम कुत्ते की तरफ गौर से देखा। इसकी गर्दन में क्या है? ये कहकर वो उठा, मगर इससे पहले एक और जवान ने कुत्ते को पकड़कर उसकी गर्दन में बंधी हुई रस्सी उतारी। उसमें गत्ते का एक टुकड़ा पिरोया हुआ था जिस पर कुछ लिखा था। सूबेदार हिम्मत खान ने यह टुकड़ा लिया और अपने जवानों से पूछा,
लिंडे हैं, जानता है तुम में से कोई पढ़ना?
बशीर ने आगे बढ़कर गत्ते का टुकड़ा लिया।
हाँ, कुछ कुछ पढ़ लेता हूं।
और उसने बड़ी मुश्किल से हर्फ जोड़ जोड़ कर ये पढ़ा,
चप चपड़ झुन झुन, चपड़ झुन झुन।
ये क्या हुआ? सूबेदार हिम्मत खान ने अपनी बड़ी बड़ी तारीखी मूंछों को जबरदस्त मरोड़ दिया।
गुड़ वर्ड होगा कोई?
फिर उसने बशीर से पूछा, कुछ और लिखा है बशीरे? बशीर ने जो हुरूफ शनासी में मशगूल था जवाब दिया,
जी हां, ये हिंद हिंद हिंदुस्तानी, ये हिंदुस्तानी कुत्ता है।
सूबेदार हिम्मत खान ने सोचना शुरू किया,
मतलब क्या हुआ इसका?
क्या पढ़ा था तुमने?
चपड़।
बशीर ने जवाब दिया,
चपड़ झुनझुन।
एक जवान ने बड़े आखलाना अंदाज में कहा, जो बात है इसी में है। सूबेदार हिम्मत खान को यह बात माकूल मालूम हुई।
हाँ, कुछ ऐसा लगता है।
बशीर ने गत्ते पर लिखी हुई इबारत पढ़ी,
चपड़ झुनझुन, ये हिंदुस्तानी कुत्ता है।
सूबेदार हिम्मत खान ने वायरलेस सेट लिया और कानों पर हेडफोन जमा कर प्लाटून कमांडर से खुद इस कुत्ते के बारे में बातचीत की। वो कैसे आया था, किस तरह उनके पास कई दिन पड़ा रहा, फिर एकाएकी गायब हो गया और रात भर गायब रहा। अब आया है तो उसके गले में रस्सी नजर आई जिसमें गत्ते का एक टुकड़ा था। इस पर जो इबारत लिखी थी वो उसने 3-4 मरतबा दोहरा कर प्लाटून कमांडर को सुनाई, मगर कोई नतीजा बरामद न हुआ। बशीर अलग कुत्ते के पास बैठकर उसे कभी पुचकार कर, कभी डरा धमका कर पूछता रहा कि वो रात में कहां गायब रहा था और उसके गले में वो रस्सी और गत्ते का टुकड़ा किसने बांधा था, मगर कोई खातिर ख्वावा जवाब ना मिला। वो जो सवाल करता उसके जवाब में कुत्ता अपनी दुम हिला देता। आखिर गुस्से में आकर बशीर ने उसे पकड़ लिया और जोर से झटका दिया। कुत्ता तकलीफ के बायस चाऊं चाऊं करने लगा। वायरलेस से फारिग होकर सूबेदार हिम्मत खान ने कुछ देर नक्शे का बगौर मुताला किया और फिर फैसला कुन अंदाज में उठा और सिगरेट की डिबिया का ढकना खोलकर बशीर को दिया।
बशीरे, लिख इस पर गुरमुखी में, इन कीड़े मकोड़ों में।
बशीर ने सिगरेट की डिबिया का गत्ता लिया और पूछा,
क्या लिखूं सूबेदार साहब?
सूबेदार हिम्मत खान ने मूछों को मरोड़ देकर सोचना शुरू किया।
लिख दे, बस लिख दे।
ये कहकर उसने जेब से पेंसिल निकालकर बशीर को दी।
क्या लिखना चाहिए?
बशीर पेंसिल के मुंह को लब लगाकर सोचने लगा, फिर एकदम सवालिया अंदाज में बोला,
सपड़ सुन सुन।
लेकिन फौरन ही मुतमईन होकर उसने फैसला कुन लहजे में कहा,
ठीक है, चपड़ झुनझुन का जवाब सपड़ सुन सुन ही हो सकता है, क्या याद रखेंगे अपनी मां के सिखड़े।
बशीर ने पेंसिल सिगरेट की डिबिया पर जमाई,
सपर सुन सुन, सोलह आने, लिख सब, सपर सुन सुन।
ये कहकर सूबेदार हिम्मत खान ने जोर का कहकहा लगाया।
और आगे लिख, ये पाकिस्तानी कुत्ता है।
सूबेदार हिम्मत खान ने गत्ता बशीर के हाथ से लिया, पेंसिल से उसमें एक तरफ छेद किया और रस्सी में पिरोकर कुत्ते की तरफ बढ़ा।
ले जा ये अपनी औलाद के पास।
ये सुनकर सब खूब हंसे। सूबेदार हिम्मत खान ने कुत्ते के गले में रस्सी बांध दी। वे इस दौरान में अपनी दुम हिलाता रहा। इसके बाद सूबेदार ने उसे कुछ खाने को दिया और बड़े नासिहाना अंदाज में कहा,
देखो दोस्त, गद्दारी मत करना। याद रखो, गद्दार की सजा मौत होती है।
कुत्ता दुम हिलाता रहा। जब वो अच्छी तरह खा चुका तो सूबेदार हिम्मत खान ने रस्सी से पकड़कर उसका रुख पहाड़ी की इकलौती पगडंडी की तरफ फेरा और कहा,
जाओ हमारा खत दुश्मनों तक पहुंचा दो, मगर देखो वापस आ जाना। ये तुम्हारे अफसर का हुक्म है, समझे?
कुत्ते ने अपनी दुम हिलाई और आहिस्ता आहिस्ता पगडंडी पर, जो बल खाती हुई नीचे पहाड़ी के दामन में जाती थी, चलने लगा। सूबेदार हिम्मत खान ने अपनी बंदूक उठाई और हवा में एक फायर किया। फायर और उसकी बाज गश्त दूसरी तरफ हिंदुस्तानियों के मोर्चे में सुनी गई। इसका मतलब उनकी समझ में न आया। जमादार हरनाम सिंह मालूम नहीं किस बात पर चिड़चिड़ा हो रहा था। यह आवाज सुनकर और भी चिड़चिड़ा हो गया। उसने फायर का हुक्म दे दिया। आधे घंटे तक चुनांचे दोनों मोर्चों से गोलियों की बेकार बारिश होती रही। जब इस शगल से उकता गया तो जमादार हरनाम सिंह ने फायर बंद कर दिया और दाढ़ी में कंघा करना शुरू कर दिया। इससे फारिग होकर उसने जाली के अंदर सारे बाल बड़े सलीके से जमाए और बंता सिंह से पूछा,
ओए बंता सैया, चपड़ झुनझुन कहां गया?
बंता सिंह ने चीड़ की खुश्क लकड़ी से बिरोजा अपने नाखूने से जुदा करते हुए कहा,
कुत्ते को घी हजम नहीं हुआ।
बंता सिंह इस मुहावरे का मतलब ना समझा।
हमने तो उसे घी की कोई चीज नहीं खिलाई थी।
ये सुनकर जमादार हरनाम सिंह बड़े जोर से हंसा।
ओए अनपढ़, तेरे साथ तो बात करना 95 का घाटा है।
इतने में वो सिपाही जो पहरे पर था और दूरबीन लगाए इधर से उधर देख रहा था, एकदम चिल्लाया,
वो आ रहा है।
सब चौंक पड़े। जमादार हरनाम सिंह ने पूछा,
ओए कौन?
पहरे के सिपाही ने कहा,
क्या नाम था उसका? चपड़ झुनझुन।
चपड़ झुनझुन? ये कहकर जमादार हरनाम सिंह उठा। क्या कर रहा है? पहरे के सिपाही ने जवाब दिया,
आ रहा है।
जमादार हरनाम सिंह ने दूरबीन उसके हाथ से ली और देखना शुरू किया।
इधर ही आ रहा है, रस्सी बंधी हुई है गले में, लेकिन ये तो उधर से आ रहा है, दुश्मन के मोर्चे से।
ये कहकर उसने कुत्ते की मां को बहुत बड़ी गाली ली। इसके बाद उसने बंदूक उठाई और शिस्त बांधकर फायर किया। निशाना चूक गया। गोली कुत्ते से कुछ फासले पर पत्थरों की किरचें उड़ाती जमीन में दफन हो गई। वो सहम कर रुक गया। दूसरे मोर्चे में सूबेदार हिम्मत खान ने दूरबीन में से देखा कि कुत्ता पगडंडी पर खड़ा है। एक और फायर हुआ तो वो दुम दबाकर उल्टी तरफ भागा, सूबेदार हिम्मत खान के मोर्चे की तरफ। वो जोर से पुकारा,
बहादुर डरा नहीं करते, चल वापस।
और उसने डराने के लिए एक फायर किया। कुत्ता रुक गया। उधर से जमादार हरनाम सिंह ने बंदूक चलाई। गोली कुत्ते के कान से सनसनाती हुई गुजर गई। उसने उछलकर जोर जोर से दोनों कान फड़फड़ाने शुरू किए। उधर से सूबेदार हिम्मत खान ने दूसरा फायर किया जो उसके अगले पंजों के पास पत्थरों में पैवस्त हो गया। बौखलाकर कभी वो इधर दौड़ा कभी उधर। उसकी इस बौखलाहट से हिम्मत खान और हरनाम दोनों मसरूर हुए और खूब कह कहे लगाते रहे। कुत्ते ने जमादार हरनाम सिंह के मोर्चे की तरफ भागना शुरू किया। उसने ये देखा तो बड़े थोक में आकर मोटी सी गाली दी और अच्छी तरह शिस्त बांध कर फायर किया। गोली कुत्ते की टांग में लगी। एक फलक शिगाफ चीख बुलंद। उसने अपना रुख बदला, लंगड़ा लंगड़ा कर सूबेदार हिम्मत खां के मोर्चे की तरफ दौड़ने लगा। तो उधर से भी फायर हुआ, मगर वो सिर्फ डराने के लिए किया गया था। हिम्मत खां फायर करते ही चिल्लाया,
बहादुर परवाह नहीं किया करते जख्मों की, खेल जाओ अपनी जान पर, जाओ जाओ।
कुत्ता फायर से घबरा कर मुड़ा। एक टांग उसकी बिल्कुल बेकार हो गई थी। बाकी तीन टांगों की मदद से उसने खुद को चंद कदम दूसरी जानिब घसीटा कि जमादार हरनाम सिंह ने निशाना ताक कर गोली चलाई, जिसने उसे वहीं ढेर कर दिया। सूबेदार हिम्मत खान ने अफसोस के साथ कहा, शहीद हो गया बेचारा,
जमादार हरनाम सिंह ने बंदूक की गर्म गर्म नाली अपने हाथ में ली और कहा,
वही मौत मरा जो कुत्ते की होती है।